ہی وجد تلا سے تول سے جان بھری سونی ارہت وائی جھک گئے گو گئے دھر گو سم جانی. ان سب کا سمادھان بھگوان نے پایا کہ سندر سما سندر پایا سمادھان ہو پایا سمادھان کرتے سارے سب کو وندن ہوئے سمرپت دھنیہ بنایا اجول تم اپنا جیون مہاویر وانی جن کلیانی جھک گئے گن گھر گوتم سوامی گن گھر
بھائیوں بہنوں پربھو ہمارے سروجھ ہو گئے. سروجھ کا دھیان کرنا ان کے اتہاس کو پڑھنا اور انہوں نے کن کن کا ادھار کیا اس کی جانکاری کرنے سے ہمیں ویراگیہ ہوتا ہے. ہمارے کرم کرتے ہیں ज्ञानवर्णीय कर्म करते हैं और प्रभु की भक्ति में तो सभी कर्म एक साथ कट जाते हैं. तो अब अगला भगवान का जो 30 वर्ष का सर्वज्ञ का जो काल है वो इतिहास का समय है. किस तरीके से भगवान ने किन किन जीवों राजाओं रानियों बड़े बड़े तत्वज्ञों का कैसे कल्याण किया वो प्रतिवर्ष का लेखा जोखा संक्षिप्त में आपके सामने क्यों इसके वाचन में तो दिनों के दिन लग जाते पूरा चातुर्मास लग जाता है पर वो वाचन में अति संक्षेप में आपको प्रतिवर्ष का बता रहा हूं. अब देखिए कि इनको 11 गणधरों को भगवान ने समाधान दिया और उनको त्रिपति का ज्ञान दिया. 14 त्रिपति क्या होती है कि वस्तु क्या है उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत्र ये संक्षेप में त्रिपति है. उत्पाद व्यय और द्रव्य मिलाकर किसी वस्तु का अस्तित्व होता है. अगर ये तीनों नहीं है तो वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है. इसी आधार पर हमारे सारे आगम लिखे गए हैं. इसका मौलिक है त्रिपति. अब देखिए इनको 14 पुरुष सहित द्वादशिंग का ज्ञान हो गया 11 गणधरों को. और उधर हमने वृतांत सुना चंदन माला आदि साधवियां बनी और चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना हो गई. साधु साध्वी श्रावक सायिका चतुर्विध धर्म संघ का भगवान का शासन स्थापित हो गया. अब तीर्थ की स्थापना करने के बाद में भगवान मध्यम पावा से राज्यगृह पधारे. राज्यगृह हमने देखा है. ये सब आप साथ साथ में इतिहास चल रहा है तो थोड़ा बिहार की तरफ भी अवलोकन करते जाइए. राजगृह कहाँ है काफी लोगों ने देखी होगी और आपके तो एकदम पड़ोस में है. और वो चातुर्मास वहीं किया. और देखिए पहले वर्ष के अंदर क्या उपकार होता है कि बड़े राजकुमार मेघ और नंदी शेण उन्होंने दीक्षा ग्रहण की. भगवान के शासन में कैसे दीक्षा होती है जैसे हम गुरुदेव से गुरु धारणा करते हैं या हम कोई व्रत लेते हैं प्रतिज्ञान लेते हैं वैसे वहां दीक्षाएं होती. दीक्षाएं नहीं भगवान के सामने इस तरीके से फटाफट फटाफट लोग मोक्ष में जाते. वो समय अच्छा समय होता है. सतयुग का समय होता है 4th आरा. अब 5th आरे में तो जम्बू स्वामी ने यहाँ मोक्ष के ताले लगा दिए. केवल ज्ञान के ताले लग गए. जम्बू स्वामी तब जो लगा के लग गए समय के कारण. तो अभी यहाँ मोक्ष नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है। तो आप देखिए भगवान की सर्वज्ञता, दूसरा वर्ष सर्वज्ञता का। अब राजगृह चातुर्मास पूर्ण कर भगवान ब्राह्मण कुंड पधारे। कहाँ पर? वही वैशाली का ब्राह्मण कुंड, जहाँ पर भगवान देवानंदा की कुक्षी में 83 दिन रहे। तो ब्रह्मदत्त और देवानंदा ने भी भगवान के दर्शन किए। यहाँ एक अनोखी घटना घटी कि जो ही देवानंदा ने भगवान के दर्शन किए, उनके थन में से जो है जो दूध की धारा तेज निकल पड़ी। तो अब इस बात को गौतम गोयमा, जो शब्द हमारे आत्माओं में आता है, गोयमा शब्द गौतम के लिए, गौतम प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं और भगवान समाधान देते हैं। गोयमा और वीर की जोड़ी इसीलिए कही जाती, वीर समाधान देते हैं। वीर ने समाधान दिया कि ये मेरी माँ है, प्रथम माँ, और 83 रात्रि मैंने इनकी दिन रात इनकी कुक्षी के अंदर गुजारे हैं। तो भगवान का आशीर्वाद उनको मिला और वो भगवान के रहते रहते ऋषभदत्त और देवानंदा मोक्ष पधार गए। देखिए बंधुओं, कितना बड़ा उपकार, कितनी बड़ी बात। आज तो एक भी जीव मोक्ष नहीं जाता। अब यहाँ आप इतिहास पढ़ेंगे, धड़ाधड़ दीक्षा मोक्ष, दीक्षा मोक्ष। तो ये कितनी बड़ी बात, हम इतना वृतांत सुनते हैं, इतिहास सुनते हैं, जहाँ दीक्षा और मोक्ष की बात आती है। बंधुओं, हम भी मन में भाव लावें कि गुरुदेव के पास जाकर के कम से कम जो बची हुई जिंदगी दीक्षित होकर के वो अपने जीवन का तो कल्याण करें। वो नहीं कर सकते तो श्रावक तो बने। ये सब इसीलिए वाचन किया जाता है कि हमारे में वैराग्य पैदा हो, हम बारावती श्रावक तो बने कम से कम। तो अब देखिए, अब वहां पर और एक घटना घटती है कि क्षत्रिय कुंड ग्राम, जहाँ भगवान वैशाली, जहाँ उनके सिद्धार्थ राजा थे, वहाँ सत्रों को समझ करके उनके दामाद जामाली ने 500 क्षत्रियों बेटी प्रिय दशना ने 100 स्त्रियों के साथ में दीक्षा ली। 1500 दीक्षा एक साथ हुई। ये दूसरे वर्ष की एक उपलब्धि थी। इस वर्ष का चातुर्मास भगवान ने वैशाली में किया। चातुर्मास संपन्न होते ही तीसरा वर्ष प्रारंभ हो जाता है, ये क्रम चलेगा। और सर्वज्ञता का तीसरा वर्ष भगवान वैशाली चातुर्मास संपन्न कर वत्स कौशाम्बी, जिसकी बात आई, ये सब जो है हमारे बिहार में कौशाम्बी पधारे। वहां क्या घटना घटित हुई कि जयंती श्राविका ने भगवान से अनेक प्रश्न पूछे, अपनी जिज्ञासा शांत की, ठीक है ना, और दीक्षा स्वीकार की। भगवान वाणिज्य ग्राम पधारे और गातापति आनंद और उसकी पत्नी शिवानंदा ने श्रावक के 12 वर्ष स्वीकार किए। ये गातापति आनंद जो है प्रथम जो है भगवान का श्रावक बना। चातुर्मास भगवान ने वाणिज्य ग्राम किया। अब सर्वज्ञता का चौथा साल वाणिज्य ग्राम चातुर्मास करके भगवान राज्यगृह पधारे। ये इतिहास है और आपको बिहार का हम भ्रमण भी करा रहे हैं कि भगवान कहाँ कहाँ विचरे। वापस राज्यगृह पधारे और वहां पर क्या एक कल्याण का काम हुआ कि धन्ना शालीभद्र, जिसका हमने इतिहास पढ़ा है, उन्होंने सत्यों को समझ करके दीक्षा ग्रहण की। धन्ना शालीभद्र शाला बहनोई थे, तो धन्ना ने तो बहुत तपस्या कर और अच्छे चारित्र का निर्वाह कर मोक्ष पधारे, और शालीभद्र जो एकाभवतारी सर्वार्थ सिद्धि विमानक देव बने, भगवान ने चातुर्मास राज्य गृह में किया। अब सर्वज्ञता का पांचवा वर्ष, हर वर्ष कितनी कितनी उपलब्धि होती है, वो ग्रहणीय है, अनुकरणीय है और हमारे जीवन को नई दिशा देने वाला है। हो सकता है कि उससे हमको भी वैराग्य प्राप्त हो जाए। अब सर्वज्ञता का पांचवा वर्ष राज्यगृह चातुर्मास कर भगवान चप्पा पधारे। वहाँ क्या हुआ, क्या उपकार हुआ, वहाँ क्या जगत कल्याण हुआ कि राजा दत्त के पुत्र मैं कन्या दीक्षा दी, जो अगवा से भगवान सिंध तौबीर पधारे, ये बहुत लंबी यात्रा की भगवान ने, और कई मुनि शुद्ध भोजन पानी के अभाव में बीच में ही स्वर्ग सिधार गए। वहां से राजा उदय, बहुत प्रसिद्ध राजा जो है, शक्तिशाली राजा दीक्षित हुआ। बहुत से राजाओं ने वहां पर दीक्षा ली। चातुर्मास भगवान ने वाणिज्य ग्राम किया। अब देखिए, पांच वर्ष भगवान की सर्वज्ञता के पूरे हुए, छठा वर्ष चातुर्मास के भगवान बाद भगवान वाराणसी, ये आपके उत्तर प्रदेश की वाराणसी काशी यहां पधारे। वहां चूलनी पिता व उसकी पत्नी श्यामा, सुरादेव उसकी पत्नी धन्या ने श्रावक धर्म स्वीकारा और दोनों भगवान के 10 प्रमुख धावकों में गिने गए। वहां पर एक और उपकार हुआ, पुद्गल नाम का एक परिवार जब रहता था, वो निरंतर बेले बेले तपस्या करता और आतापना लेने से उसको अवधि ज्ञान हो गया। लेकिन वह अवधि ज्ञान विभंग अज्ञान था। उसने घोषणा की कि देवों की आयु कम से कम 10,000 वर्ष और अधिकतम 10 सागर है। यह चर्चा गौतम स्वामी के कानों में गई। भगवान से प्रश्न पूछा, भगवान ने कहा यह सही नहीं है। न्यूनतम आयु देवों की ये सीखने की बात है बंधुओं, न्यूनतम आयु 10 वर्ष होती है, लेकिन उत्कृष्ट 33 सागर होती है। यह बात भगवान ने सुनी, यह बात पुद्गल के कानों तक पहुंची। वह बहुत शंकित हुआ जिसने यह घोषणा की थी। वो प्रभु के पास आया और भगवान से क्षमा याचना की, और क्षमा याचना करके अब आगे आपका कार्यक्रम करना है, कार्यक्रम आपका करना।
हाँ,
दीक्षित हुआ और 11 अंगों का अध्ययन किया और निर्वाण को प्राप्त हुआ। चातुर्मास भगवान ने राजगृह में किया। भगवान के 6 वर्ष के सर्वज्ञता काल, तो हम यहाँ थोड़ा विराम दे रहे हैं। अभी हमारे श्रावक श्राविकाओं के कार्यक्रम, क्योंकि थोड़ा थोड़ा परिवर्तन चेंज होता रहना चाहिए, ताकि आपका मन जो है वह भी बराबर एकाग्र होता रहे।
और इनको उपास भजनना है, पहले भजन लो उपास वगैरह, और आपके लंबी बात
उपवास पचक लीजिए, जिनको पचकना हो
तो उपवास वाले उपवास भजन लो। नमो अजंतान, नमो दिशान, नमो आयान, नमो ऊर्जा, नमो नवे सर्वतान, एको पंच नमो कारो सको पापनात्म मंगला परम हवई मंगलम ओके सूर्य उत्पादम भत्तायण मसण पान खादी सानी मंदरथना भोगेनम सरसा गाणना उत्पादन गोधी रामी काले सूर्योदय या नौका की आपने धारणा परवाने क्या हो।
और चकोरी पोषक ज्यादा से ज्यादा करो, चारकोरी पोषक ज्यादा से ज्यादा करो।
चौकारी पोषण का टाइम हो रहा है, जिसको बदलना है चौकारी सजग देता है, लेकिन चारकोरी सबको करना ही है। उपास वालों को ध्यान रहे, चौकारी कोई है तो बचक लो, चौकारी वाले पोषण बचक लो, कोई है क्या यहाँ पे चौकारी आपने?
हाँ, थोड़ा आगे आ जाओ,
क्या प्रहरी वाले,
क्या प्रहरी वाले आगे आ जाओ।
पानी लगाया, पानी नहीं लगाया उसको 10वां, पानी नहीं लगाया उसको 11वां, और पानी लगाया उसको उनको 10वां। एकाशम कोसो बात में मसन पानी खादी शादी पचिकान अभम पचकान मोमुख मणि सुमनाई पचकान माला वर्ग विदय बनाई पचकान सत्य मुसलाई सावज योग पचकान जा बहुरतम पचवा सावे जुवेण जीवन न पड़ेगी न कारणी मरता वायता पायता सत्य बंदे परिपामी निंदामी भयामी अपमान बोधिरामी पांचवा नमस्कार माऊ। आपको यह ढंगे की जरूरत पड़ेगी, आपकी ढंगे की जरूरत पड़ेगी नहीं, इतने में हो जाएगा। अच्छा ये भी काम तेरी इनको पड़ेगी वहां पर बच्चों टाइम ट्रेडिंग करने का हाँ सर साल
Thank you. Thank you. शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा। स्कूल में अध्यापक की तेजी से कुछ मेघावी छात्रों का सहयोग लिया जाता है, उनमें सर्वप्रथम आपका नाम था और राजस्थानी में कहावत है दूसरा वर्ग पालन पिछाने है। यह कहावत आप पर शत प्रतिशत खड़ी करती है। बचपन में ही आप कक्षा के मॉनिटर थे, आपने अनेक गुण से अनुशासन, स्वच्छता, पत्रकारिता एवं आप हर कार्य को कलात्मक रूप से करते थे। आप अपनी माता जी के साथ साथ अपने बड़े भाइयों के भी कलेजे के तोड़ रहे थे।
Thank you.
उठने पर पटरी पर पन्ना रखकर उन्होंने बड़ी मुश्किल से युवाचार्य का नियुक्ति पत्र लिखा। मुनि मगनलाल जी ने पत्र पढ़कर सबको सुनाया। मुझे कारोबारी ने उस पत्र को मुनि तुलसी को सौंपा। उसके बाद उन्होंने उसी समय ओढ़ी गई नई पत्नी उतार कर मुनि तुलसी को ओढ़ा दी। जय जय की मनियों से रंग रवन घूम उठा। 9 नवंबर 1980 का पुण्य दिवस। आज कुंती के उभरे मस्तिष्क की खोज समन सेन, युग की मां समन सेन का निर्माण। समन सेन एक ऐसी सेन जो गृहस्थ जीवन से मुक्त होकर साधु जीवन की मर्यादाओं में कटा हुआ नहीं है। एक ओर संयम की साधना, दूसरी ओर विकास का पर्याप्त अवकाश, तीसरी ओर जन जन तक जिन वाणी पहुँचाकर जिन साधन की प्रभावना, नए युग के समाज में समर श्रेणी के निर्माता को नमन वंदन अभिनंदन। चक्रवर्ती से तेजस्वी ओजस्वी हीन गिर से दृढ़ व्यक्तित्व की धनी आचार्य तुलसी प्रयोग धर्मी थे। वे नए नए प्रयोगों एवं नई नई सृजनशीलता से विश्व को चौंका देते थे। आज जहाँ हर व्यक्ति कुर्सी की दौड़ में लगा हुआ है और कुर्सी पाने के लिए केकड़ा वृत्ति भी अपना लेता है, वहीं 20वीं सदी के इस महामानव ने लोगों के सामने एक मिसाल कायम की। सब तरह के सक्षम होने के बाद भी आपने अपने उत्तराधिकारी को स्वयं अपने पद पर बैठाया और युवाचार्य महाप्रज्ञ को आचार्य महाप्रज्ञ के रूप में अभिषेक कर संघ में नया अवदान दिया। पद का महत्व आपको नहीं लुभा पाया। धन्य हो गई उस दिन सुजानगढ़ की पुण्य धरा इस दृश्य को देखकर।
विक्रम संवत 2014 गंगा के ऐसी धरा न जाने कब सहस्त्र रश्मि की सूर्य को काल रूपी अंधेरे ने सदा के लिए आच्छादित कर दिया। 20वीं सदी के युग पुरुष तुलसी के युग का अवतार हो गए। पूरा गर्व चंद मानो जड़वत हो गया। क्या क्यों कैसे हुआ कोई कुछ समझ में नहीं पाया। न केवल तेरा पर समाज, न केवल तेज समाज, अपितु संपूर्ण विश्व ने इस महामना को अष्टपुरुष नेत्रों से सिखाया।
करोड़ों लोगों के दिलों को खंड खंड करता हुआ तेरा पंथ के इतिहास में तुलसी युग का अचानक अंत हो गया। जैन जगत का महासूर्य हमेशा के लिए अस्तकाल में चला गया। जिस घटना की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी वह घटित हो गई। पूरे विश्व में तुलसी महाप्रज्ञ की जोड़ी को वीरोग्यमय जोड़ी के समान माना गया। इस जोड़ी ने देश विदेश में जैन धर्म की ध्वजा को ऊंचा फहराया। आप कई बार फरमाते मैं अंतिम समय तक काम करता रहूंगा। आपकी मनोकामना आकर हुई अंत वह अंतिम क्षण कब और कैसे आया पता भी नहीं चला। तेरा पंथ के इस शक्लाका पुरुष के अंतिम दर्शन हेतु पूरा देश उमड़ पड़ा। शब्द में गुरुदेव के चरणों को श्रद्धा समर्पित कर पाना कठिन है।
उपासक समाज परिवार और दर्शन के प्यार प्रोत्साहन Thank you. बहुत सुंदर ओ महाराज बहुत सुंदर
बोलना हो
अब महिला मंडल की एक सामूहिक गीतिका
यूपुर के प्यार
Thank you. साथ हमारे भगवान महावीर के साधना पाद को आश्रम को चलाने के लिए निवेदन की मानता देखा।
और कोई योग परिषद वगैरह और कोई अपनी योगदान करना चाहे समझी में तो उनका स्वागत है, ताकि ये क्रम पूरा हो जाए। युग परिषद और कोई भाई प्रभु की अभ्यर्थना में भाइयों और बहनों, पर्युषण पर्व गांठों को खोलने का पर्व है, पर्युषण पर्व निर्ग्रंथ होने का पर्व है, पर्युषण पर्व हल्का होने का पर्व है, पर्युषण पर्व आत्मा को धोने का पर्व है। दुनिया में बहुत पर्व मनाए जाते हैं, हिंदुस्तान में 365 दिन किसी न किसी जाति संप्रदाय के पर्व आते ही रहते हैं, इसीलिए हिंदुस्तान को एक रंगीला देश कहा जाता है। लेकिन पर्युषण महापर्व एक अलग तरह का पर्व है, ये पर्व राज से विराट की ओर जाने का पर्व है, ये पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन को मोड़ें, जीवन का मार्गांतर करें, जीवन में वैराग्य लावें, अनाशक्ति लावें। विवेकानंद जी ने कहा, जग माही ऐसो रहो और ज्यों अंबुज शर्माए, नरे नीर के आसरे पर जल छूवत नाए। आप श्रावक बनकर मुक्त हो सकते हैं, घर में रहकर भी धर्म की आराधना कर सकते हैं, लेकिन करें कैसे कि जिस तरीके से कमल का फूल होता है जो कीचड़ में रहता है, कमल तो सोचता है कि मैं कीचड़ से ऊपर हूं और कीचड़ सोचता है कि उसकी जो जड़ है वो मेरे अंदर है। बंधुओं, तो इसीलिए आप घर में रहो लेकिन आपका तारतम्य, आपका तार प्रभु से अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो हम इस क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, हमारे परम पिता परमेश्वर प्रभु भगवान ईश्वर हमारे कर्णधार वीतराग बन गए, सर्वज्ञ बन गए, और उन्होंने 7 वर्ष पूरे कर लिए सर्वज्ञता के। अब 8वें वर्ष में चलिए, कितना उपकार, कितना जगत कल्याण की राजगृह वर्षावा समाप्त कर भगवान कौशाम्बी पधारे बिहार में। उज्जैनी के राजा चंद प्रज्योत बहुत प्रसिद्ध राजा है, उसने क्या है, पहले राजा अपने बल के और अपनी सेना के बल पर जो है किसी कमजोर राजा को या कमजोर जो है शासन को घेर लेते, तो इन्होंने कौशाम्बी को घेर लिया, क्योंकि वहां पर मृगावती राज्य कर रही थी, उसके घेरने का लक्ष्य दूसरा था, वो मृगावती पर मुक्त हो गया था। मृगावती बहुत वैरागी प्रवृत्ति की थी और भगवान वहां विराज रहे थे, तो महारानी ने भगवान के समक्ष आकर कहा कि मेरा पुत्र उदयन नाबालिक है, मैं चंड प्रद्योत राजा को जो है के संरक्षण में इसको सौंप करके और मैं दीक्षा लेनी चाहती हूँ, ये निवेदन भगवान से किया। चंड प्रद्योत राजा भी भगवान की सेवा में था और ये जानबूझकर निवेदन किया कि मैं दीक्षा का निवेदन भगवान को कहूँ करूँ तो मेरी सारी समस्या हल हो जाए, न तो मुझे घेरे, न आक्रमण करे, न मेरी प्रजा का किसी भी तरीके से खून खराबा हो। तो अब भगवान के सामने वो विराजे हुए थे चंद्र प्रद्योत, तो उन्होंने न चाहते हुए भी, उस पर मुक्त होते हुए भी, उन्होंने उदयन का संरक्षण, तो राजा को प्रजा का संरक्षक होता ही है, तो उसका संरक्षण स्वीकार किया और मृगावती को जो है वो दीक्षा के लिए अपना इजाजत दे दी। इच्छा न होते हुए भी चंद्र प्रद्योत ने इसके साथ साथ में अपनी 8 रानियां अंगारवती आदि को भी दीक्षा की अनुमति दी। अब भगवान कौशाम्बी के बिहार कर वैशाली चातुर्मास किया और सर्वज्ञता का नौवां मास। स्नेह ने भगवान सर्वज्ञता का काल सबके उद्धार के लिए तिन्नान कार्यान। ईश्वर होते हैं, साधु होते हैं, आचार्य होते हैं, इनको तिन्नानम कार्यानम कहा जाता है कि ये स्वयं करते हैं और औरों को तारते हैं। वैशाली चातुर्मा संपन्न कर प्रभु मिथिला काकंडी पधारे। भद्रा पुत्र विपुल सुनक्षत्र आदि ने दीक्षा ग्रहण की। ओलास पुत्र आजीवक मत, गोशालक का मत आजीवक मत कहलाता है। वहां के बहुत धनाढ्य कुंभकार सद्दाल पुत्र व पत्नी अग्नि मित्रा ने श्रावक व्रत स्वीकार किया और ये भगवान के प्रमुख 10 श्रावकों में से एक बने। गोशालक का ये मुख्य श्रावक था, अनुयायी था। गोशालक सद्दाल पुत्र को मनाने आया, अपने मत में मिलाने के लिए आया, परंतु सद्दाल पुत्र ने उसकी बात नहीं मानी और वह भगवान के ही संरक्षण में रहा। कंपिलपुर में भी कुंड पोलित चावक बना। इस वर्ष भगवान ने चातुर्मास वाणिज्य ग्राम में किया। भगवान की कितना कितना उद्धार किया ये हम आगे देखते जाएंगे कि सर्वज्ञता का 10वां वर्ष भगवान राजगृह पधारे। वहां क्या घटना घटित होती है कि पाश्य भगवान की परंपरा के अनेक श्रमों ने चातुर्याम धर्म से वो जो है वो पंच महाव्रतों में प्रवेश लिया और महाशतक वो गाथापति श्रावक बना। इस वर्ष का चातुर्मास भगवान ने राजगृह में किया। भगवान सबका उद्धार करने वाले हैं। भगवान के जीवन का लक्ष्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा जीवों का उद्धार किया जाए। सर्वज्ञता के 11 वर्ष में भगवान चातुर्मास संपन्न कर कृतंगला पधारे और वहां पर भक्त स्कंदक को एक पिंगल मुनि नाम के थे, दूसरे संप्रदाय के, उन्होंने कई प्रश्न पूछे लेकिन वह जवाब नहीं दे सका तो शंका समाधान हेतु भगवान के पास में आया। भक्त स्कंदक और दीक्षा ग्रहण की और अपना कल्याण किया। श्रावस्ती होते हुए भगवान वाणिज्य ग्राम पधारे और वहीं चातुर्मास किया। सर्वज्ञता का 12वें वर्ष में कितना कितना उपकार, कितना कितना कल्याण भगवान ने किया कि चातुर्मास वाणिज्य ग्राम संपन्न कर ब्राह्मण कुंड जहां पर भगवान ने प्रथम माता के गर्भ में 83 रातें बिताई थी, बहुशाल उद्यान में पधारे और अपने दामाद जमाली ने 500 मुनियों के साथ वहां पर अलग विचरने की जो है वो इजाजत मांगी, पर भगवान मौन रहे। लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छा से स्वतंत्र होकर 500 साधुओं के साथ विहार करने लगा। भगवान कौशाम्बी पधारे, वहां एक बड़ा अचेरा हुआ। क्या हुआ कि सूर्य चंद्र मूल रूप में ही जो है देव रूप में नहीं, अपने मूल रूप में ही भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ आए। ये अचेरा एक आश्चर्य माना जाता है। कौशाम्बी के विहार कर भगवान ने चातुर्मास राजी गृह में किया। सबसे अधिक लेखाजों का पूरा आएगा, सबसे अधिक सर्वज्ञता के बाद चातुर्मास 30 सालों में से राज्य गृह में किया। अब सर्वज्ञता का 13वां वर्ष में बहुत संक्षिप्त में अति संक्षिप्त विशेष बात का ही आपके सामने वर्णन कर रहा हूं कि राजगृह चातुर्मास करके भगवान चंपा पधारे। अब देखिए मगध नरेश श्रेणी राजा का परम भक्त जो कि श्रेणी कभी नारकी में है और अगली 24 में वो तीर्थंकर बनेंगे, वही श्रेणी की मृत्यु के बाद वहां पर मगध नरेश ने जो है वो वहां पर चंपा को अपनी राजधानी बनाया। भगवान के आने का समाचार सुनकर राजसी घाट बाद से वहां का एक राजा कोणिक भगवान का प्रवचन सुनने आया और श्रेणी के दस पौत्र पद्म भद्र धनाधीश पालित आदि विकसित हुए। इस वर्ष भगवान ने चातुर्मास मिथिला में किए और कई आचार्य ये चंपा में ही चातुर्वास मानते हैं। अब भगवान का सर्वज्ञता का 14वां वर्ष कितना उपकार करते हैं। मिथिला चातुर्मास संपन्न कर भगवान चंपा पधारे, वैशाली के अंदर घमासान युद्ध हुआ। एक तरफ विशालपति वैशालीपति राजा चेतक जिसकी सात पुत्रियों का अपन ने वर्णन सुना था और 18 गणराज्य, दूसरी तरफ मगधपति राजा कौणिक, तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ और कौणिक की विजय हुई। कौणिक के 10 पुत्र चेतक के हाथों इस युद्ध में मारे गए। उनकी माताओं ने दुखी होकर के दीक्षा ग्रहण कर ली। भगवान ने उनका उद्धार किया। चंपा से विहार कर भगवान मिथिला पधारे और चातुर्मास मिथिला में ही किया। सर्वज्ञता का 15वां वर्ष मिथिला से विहार कर भगवान श्रावस्ती पधारे। वहां श्रेणी केलना के पुत्र हल और बिहल दोनों ने दीक्षा ली। वे दोनों कौणिक राजा के सगे भाई थे। भगवान श्रावस्ती के कोष्ठक उद्यान में रुके हुए थे। अब देखिए गोशालक ही श्रावस्ती के निकट विचरता था। तेजोलेशिया और अष्टांग निमित्त ज्ञान से जिसका की वर्णन पहले आपको कांतिलाल जी ने बता दिया है उसका मैं पुनः जो है वो रिपीटिशन नहीं करूंगा। लेकिन अब जो उन्होंने दो मुनियों को भस्म किया उसके आगे जो है बात बताना चाहूंगा कि अब इससे भगवान ने वहां पर 5-7 कदम जो हटकर के तेजोलेशिया भी छोड़ी, जो कि भगवान का चक्कर काट करके वापस तेजोलेशिया उनके शरीर में गोशालक के शरीर में प्रविष्ट हुई। गोशालक वहां पर जलने लगा, बोला मेरी तेजोलेशिया से आपका शरीर प्रभावित होगा। भगवान को बोला गोशालक, अपने को सर्वज्ञ समझता है, वो बोला कि आप 6 माह के भीतर इस छद्मस्त अवस्था के अंदर ही मर जाएंगे। भगवान महावीर बोले मैं 6 माह के भीतर नहीं मरूंगा, 16 वर्ष तक सुख से बिचरूंगा। तू 7 दिन में पित्त ज्वर से पीड़ित होकर मर जाएगा। गोशालक ने खूब उपचार किया लेकिन नहीं बचा। अंत समय में उसने पश्चाताप किया। भाइयों और बहनों देखिए इसने कितना कितना जो है असत कार्य किया, कितना कितनी असाधना की, कितना कितनी अहिंसा की, परंतु अंत समय में पश्चाताप किया। इसीलिए भाइयों और बहनों संवत्सरी पश्चाताप करने के लिए आती है, प्रायश्चित करने के लिए आती है। तो आप अपनी ग्रंथियों का निरीक्षण करें किस किस साथ से इस जन्म के अंदर हमारा भयंकर विरोध चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, राग द्वेष चल रहा है, उनको याद करें, उस ग्रंथि को ढीला करें और संवत्सरी का हम जो प्रतिक्रमण करेंगे 40 लोगत का ध्यान करेंगे, सारी ग्रंथियों को खोलना है और उनसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में आज और कल पूरा दिन हमारे पास है, उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में एक एक ग्रंथि से हमको शुद्ध होना है। अब देखिए कि वो पश्चाताप करने का गोशालक देवलोक से लंबा भ्रमण कर अंत में निर्वाण को जाएगा। गोशालक भगवान श्रावस्ती से विहार कर मैंडीय ग्राम पधारे। वहां भगवान के जो तेजोलेशिया उसने छोड़ी थी गोशालक ने, तो दहा ज्वर थोड़ा सा बुखार उत्पन्न हुआ। अब क्या हुआ यह बात उनके प्रिय शिष्य सिंहणगार को मालूम हुई तो उसका ध्यान छूटा, वो रोने लगा। भगवान से निवेदन किया कि उपचार बतावे। भगवान ने उस पर करुणा की कि मैंडीय ग्राम में रेवती गातापति के घर से जो बिजोरे का पाक मेरे लिए, 2 तरीके के पाक बने हैं, मेरे लिए जो बिजोरा का पाक नहीं बना है तुम लेकर के आओ, वह जो है प्राशुक है वो ऐश्वर्य है और उसको लिया जा सकता है। भगवान ने लिया, स्वस्थ हो गए। अब भगवान का दामाद जमाली मतभेद के कारण वहां अलग हो गया, साधकों के उसकी ऐसी ही जो है कर्मों की जो है भटकन थी। साध्वी पुत्री प्रियदर्शना भी अलग हुई, लेकिन पुनः साथ में आ गई। पावस चातुर्मास भगवान ने मिथिला में किया, सर्वज्ञता का 16वां वर्ष पावस प्रवास मिथिला में कर भगवान श्रावस्ती पधारे और पार्श्व भगवान के आचार्य केशी कुमार शमन के साथ में लंबा वार्तालाप चला, जिससे पूरा उत्तराध्ययन का 23वां अध्ययन बन गया। 500 साधुओं के साथ चातुर्मास से 505 महाव्रत स्वीकारे केशी कुमार ने और उनका बड़ा उपकार किया। ये पार्श्व रूप की परंपरा के जो है हमारे बड़े आचार्य थे। और चातुर्मास वाणिज्य ग्राम में किया, सर्वज्ञता का 17वां वर्ष वाणिज्य ग्राम से चातुर्मास भगवान ने राजगृह में किया। अनेक मुनि संसारावा स्वर्ग निर्माण को भगवान की आराधना सानिध्य के अंदर पधारे। सर्वज्ञता का 18वां वर्ष राजगृह से चातुर्मास संपन्न कर प्रस्थ चंपा पधारे भगवान, वहां से दर्शानपुर पधारे। वहां का दर्शान भद्र सज धज कर अहंकार के साथ आया कि इतनी रिद्धि सिद्धि के शायद ही किसी राजा ने प्रभु के दर्शन किए हैं। इंद्र ने देखा कि वो अहंकार कर रहा है अपने वैभव का, उसको शांत किया और वो राजा के पास में आया। राजा वो है, उसने भगवान से जो है सम्यक तो ग्रहण किया, दीक्षा ली, इंद्र ने प्रणाम किया और वर्षावास वाणिज्य ग्राम के अंदर किया। सर्वज्ञता का 19वां वर्ष वाणिज्य ग्राम चातुर्मास संपन्न कर भगवान कंपिलपुर पधारे। वह अंबर ने उपदेश सुनकर के, परिवारजक था, उसने उपदेश सुनकर के श्रावक व्रत स्वीकार किया और कुछ रिद्धियां प्राप्त किए, व्यक्रिय लब्धि को प्राप्त किया। वो सौ रूप बनाकर पारणा हेतु सौ ग्रह में जाता, कोतूहल मचाता। इसकी लंबी गाथा है, वो हमारी एक जो भगवान की जो है मुख्य साविका थी उसके घर गया, लेकिन उसने पहचान लिया कि भगवान इस तरीके से जो है
सुलता था।
हाँ, सुलता साविका। तो वर्षावास वैशाली में किया, सर्वज्ञता का 20वां वर्ष वैशाली चातुर्मास संपन्न कर भगवान वाणिज्य ग्राम पधारे। पारस्व परंपरा के गांगेय मुनि बहुत प्रसिद्ध मुनि थे, भगवान से कई प्रश्न पूछे और चातुर्याम से 5 महाव्रत स्वीकार किया। भगवान ने चातुर्मास वैशाली में किया और सर्वज्ञता का 21वां वर्ष वैशाली चातुर्मास संपन्न कर भगवान राजगृह पर आए। वहां मद्दुक श्रावक बहुत प्रसिद्ध श्रावक था, उसने कालोद, इसका पूरा एक लंबा प्रसंग है उसमें नहीं जाऊंगा मैं, कालोदयादि आदि अन्य तीर्थ के लोगों को प्रश्न का सही सही उत्तर दिया और भगवान ने मधु के तत्व ज्ञान की प्रशंसा की। और इस वर्ष का चातुर्मास जो है भगवान ने राजगृह में किया। 22वां वर्ष भगवान की सर्वज्ञता का राजगृह होते हुए नालंदा पधारे। अन्य तीर्थ के लोग कालोदयी शैलोदयी ने भगवान से विविध चर्चा कर भगवान से वो तत्व ज्ञान प्राप्त किया, सम्यक जो है प्राप्त किया और मुनि दीक्षा स्वीकार की। चातुर्मास भगवान ने नालंदा में किया। 23वां वर्ष नालंदा चातुर्मास संपन्न कर परम पिता परमेश्वर प्रभु महावीर वाणिज्य ग्राम पधारे। प्रवचन से प्रभावित होकर सुदर्शन सेठ ने संयम स्वीकार किया। 12वां सुदर्शन सेठ ने शुद्ध चारित्र पालकर निर्वाण प्राप्त किया। चातुर्मास भगवान ने वैशाली में किया। 34वां सर्वज्ञता का वर्ष वैशाली चातुर्मास संपन्न कर भगवान साकेत पधारे, जहां राजा किरात ने देशना सुनी वैराग्य हुआ। भाइयों और बहनों, भगवान के समक्ष जो जो उपस्थित हुए वैराग्य हुए, वैरागी बने, श्रावक बने और दीक्षित हुए, मोक्ष गए, तो भगवान क्या ये पूरा संदेश भगवान की सर्वज्ञता का सुनकर के हम श्रावक वर्ष स्वीकार करें और अपने जीवन में अनाज शक्ति और वैराग्य को बढ़ाएं, इसीलिए ये पर्युषण पर्व आता है। तो वहां पर राजा किरात ने देशना सुनी, वैराग्य हुआ और दीक्षित हुआ। भगवान मथुरा शौर्यपुर नंदीपुर को अपनी चरणों की धूली से पावन करते हुए मिथिला पधारे। 25वां वर्ष भगवान ने मिथिला चातुर्मास में राज संपन्न कर राजगिरी पधारे। गंधर्व प्रवास आप देखिए, गंधर्व भगवान के रहते रहते 11 में से 2 गंधर्वों को छोड़ करके शेष जो है 9 हैं, वो भगवान के समय के अंदर ही मोक्ष को पधार जाते हैं। गंधर्व प्रवास ने 1 मास के अंतर में निर्वाण प्राप्त किया, चातुर्मास मिथिला में किया, 28वां वर्ष मिथिला संपन्न कर नालंदा पधारे। गंधर्व अचल भ्राता मैतारी ने संसारा कर मोक्ष प्राप्त किया, चातुर्मास नालंदा में किया। नालंदा 27वां वर्ष नालंदा से मिथिला पधारे और चातुर्मास मिथिला में किया। 28वां वर्ष इस वर्ष चातुर्मास मिथिला में था। 29वां वर्ष मिथिला चातुर्मास संपन्न कर भगवान राजगिरी पधारे। इस वर्ष अग्निभूति वायुभूति गणों ने अंशत पूर्व निर्वाण को प्राप्त किया, चातुर्मास राजगिरी में किया। 23वां अंतिम वर्ष भगवान का राजगिरी चातुर्मास संपन्न कर वही कुछ समय विराजे। वहाँ गणधर व्यक्त मंडित मौर्य पुत्र का अकंपित ने 1-1 मास अनशन करके निर्वाण को प्राप्त किया। अंतिम चातुर्मास राजा हस्तिपाल की रज्जुक सभा में किया। अनेक जीव उद्घोषित हुए, राजा पुण्यपाल ने जो संयम स्वीकार किया। भगवान का केवली प्रयाय 29 वर्ष 6 मास और 15 दिन का सर्वज्ञ का था। अब भगवान का अंतिम प्रवचन का समय आ रहा है। कई भावी भवी जीवों का उद्धार किया भगवान ने, कई श्रावक बने, कईयों ने स्वयं संयम स्वीकार किया, शुद्ध संयम पालकर निर्वाण को पधारे। पूरे क्षेत्र के अंदर धर्म की लहर फैली हुई थी। कई जीवों ने तत्व ज्ञान प्राप्त किया। बलि प्रसाद आश प्रसाद धीरे धीरे टूटने लगी और सारा पूरा मानव मात्र का जीवन आलोक पुंज बना। लिच्छवी और मलिक गणराज्यों के निवेदन पर अंतिम वर्षावास भगवान ने पावापुरी में बिताया। लोगों को ध्यान था कि अंतिम वर्षावास है, देशना का खूब लाभ लिया। कार्तिक वदी अमावस को संध्या काल में भगवान ने अपने शिष्य गौतम गणधर को, जो वेद विद्वान देव शर्मा को समझाने के लिए उनके घर भेजा। साथ ही अभी थोड़ी बाद में अभी
गौतम
अभी इसका जो है जो एक गीत है, तो थोड़ा सा जो मैं आपको चेंज करने के लिए, आपका जो मग्नता को और बढ़ाने के लिए अब एक गीत इसी जो विषय का जो है, गौतम और वेद विद्वान देव शर्मा का जो है,
मोह वेद गौतम भेजे गए, मोह करे थे गौतम बाद में निर्माण करे।
हाँ,
निर्माण पहला।
अब देखिए, अब आगे जो है वहां भेजा और भगवान कार्तिक वदी 13 ने अंशन स्वीकार कर लिया। भगवान ने कार्तिक वदी अमावस्या को अंतिम समय जुड़ा। बहुत सारे राजा और विशाल, अब मैं बहुत लंबा चौड़ा विवेचन है, संक्षेप संक्षेप इससे संक्षेप नहीं किया जा सकता। तो वहां पर कार्तिकी 13 को अंशन स्वीकार किया और बहुत सारे राजा तथा विशाल जनमेदनी उपस्थित थी। प्रवचन शुरू हुआ जो 16 प्रहर 48 घंटे भगवान का अंतिम प्रवचन पावापुरी में 48 घंटे चला। 55 अध्ययन पुण्य फल के और 55 अध्ययन पाप फल के विकास भगवान ने पूरा विवेचन दिया। 55 100 और जो है वो 10 जो है वो अध्ययन का उन्होंने दिया। बीच में कई प्रश्नोत्तर चले, कई जिज्ञासाएं हुई, भगवान ने कई समाधान किया। अब देखिए कि अब क्या होता है कि इंद्र के द्वारा भगवान को आयु वृद्धि की प्रार्थना की जा रही है। अब मोक्ष गमन का समय निकट है, देवों व मानवों की भारी भीड़ जमा है। इंद्र ने निवेदन किया, आपके जन्म काल में उत्तरा फागुनी नक्षत्र था, उस पर इस समय भस्म ग्रह नक्षत्र लग रहा है जो 2000 वर्ष तक संक्रांत रहेगा। अतः आयु काल आप थोड़ा सा बढ़ा लें तो वह भस्म ग्रह आप पर प्रभावी नहीं होगा। भगवान ने कहा, न भूतो न भविष्यति। तीर्थंकर भी अपने आयुष्य का एक क्षण भी न घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं तो भाई भाइयों और बहनों, हम किस बात की मूली हैं? हमें जो कुछ शेष समय बचा है, आज हम संकल्प लें कि उस समय का अधिक से अधिक उपयोग धर्म प्रवृत्ति में करेंगे, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा के भगवान के दर्शन करने में हम वो समय बिताएंगे। तो अब इस तरह से अब क्या होता है कि निर्वाण के समाचार, मतलब क्या होता है कि भगवान ने अपने प्रिय शिष्य जो गौतम है उन पर बहुत मोह करता था भगवान, तो भगवान ने उसके, अगर वो मेरे पास रहेगा मैं मोक्ष का गमन करूंगा, उसका मोह बहुत बढ़ जाएगा, उसकी गति क्या हो सकती है, तो उस पर करुणा करके उन्होंने उसको जो है जो वेद विद्वान देव शर्मा के पास भेजा है, तो वहां पर जो है वो निर्वाण के समाचार सुनकर कि अब क्या होता है कि भगवान सिद्ध बुद्ध मुक्त और वो मोक्ष पधार गए, उनका निर्वाण हो गया और नारदी के जीवों ने थोड़ी सी शांति महसूस की। जब कोई भी परमात्मा या जीव मोक्ष जाता है केवली का, तो नारदी के जीव है उनको थोड़ी शांति मिलती है, प्रसन्नता होती है। अब निर्वाण के समाचार सुन करके इंद्र शर्मा के घर जो गौतम स्वामी गए हुए थे वापस आए, मुहाकुल आए और उन्होंने कहा कि भगवान आपने मेरे साथ क्या किया, ये क्या कैसा अन्याय किया, मैं तो आपका परम भक्त परम शिष्य था और आपने ऐन समय पर जो है मुझे आपके जो है दर्शन नहीं हो पाए, आपने ये क्या किया। इस तरीके से वो गौतम जो किस तरीके से जो है पश्चाताप करते हैं वो गीत के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है।
गौतम स्वामी विलाप कर रहे हैं, मेरे स्वामी जाते जाते कुछ न कह गए, मेरे स्वामी जाते जाते कुछ न कह गए, मंगल दर्शन अंतिम दर्शन करने रह गए, मेरे स्वामी जाते जाते कुछ न कह गए, क्षमा कर दो देव मुझको हो गई यदि भूल, हो गई यदि भूल, मेरे पर बरसाओ भगवन प्रेम स्नेह के फूल, प्रेम स्नेह के फूल, कहते 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 गौतम प्रभु के आंसू बह गए, मेरे स्वामी जाते जाते कुछ न कह गए, कैसी थी वह घड़ी जब में हो, कैसी थी वह घड़ी जब में भया तुम
जहां गए हो नाथ वहां तो आने से मजबूर, आने से मजबूर। पावन दर्शन सेवा के तो महल ढह गए, मेरे स्वामी जाते जाते कुछ न कर गए।
अब वहां पे विलाप कर रहे हैं और विलाप करते करते कैसे मोह टूटता है।
मोह का बादल हटे तो हो, मोह के बादल हटे तो चमका केवल ज्ञान, चमका केवल ज्ञान। केवली मुनि गौतम प्रभु ने पाया पद निर्वाण, पाया पद निर्वाण। मैं भी आना चाहता हूँ जहाँ प्रभु गए, मेरे स्वामी जाते जाते कुछ न कह गए, मेरे स्वामी जाते जाते कुछ न कह गए।
भगवान का जो निर्माण हुआ, निर्वाण हुआ, मैं थोड़ा सा उनके जीवन का परिचय बताता हूँ पूरा। देखिए भगवान की कुल आयु और चातुर्मास, कुल आयु 72 वर्ष, 30 वर्ष भगवान ने गृहवास में बिताए, 12 वर्ष 13 पक्ष छद्मस अवस्था में उन्होंने पूरी साधना की, मौन साधना, कठिन तपस्या की साधना और सारे कर्म सफाए। प्राय प्राय तीर्थंकर पूरी साधना केवल ज्ञान होने के पहले मौन रहते हैं, क्योंकि वो अपने आत्मा का अध्ययन करते हैं और जब पूरा अध्ययन हो जाता है उनको केवल ज्ञान हो जाता है, आत्मा पूरी स्पष्ट, केवल ज्ञान मतलब आत्मा स्पष्ट हो जाती है, तो उसके बाद वो प्रवचन देते हैं क्योंकि वो सर्वज्ञ बन जाते हैं, उनसे कोई चीज जो है शेष नहीं रहती है। और 13 पक्ष छद्मस रहे और 13 पक्ष कम 30 वर्ष तक केवली रहे। जन्म ईसा पूर्व 599 में हुआ, दीक्षा ईसा पूर्व 579 में हुई और केवल ज्ञान ईसा पूर्व 557 में हुआ, निर्वाण ईसा पूर्व 527 में हुआ। अब देखिए भगवान का आध्यात्मिक परिवार गणधर 11 केवल ज्ञानी, भगवान के परिवार में 700 केवल ज्ञानी थे। जब से वो सर्वज्ञ बने उनके आध्यात्मिक परिवार में 700 केवल ज्ञानी रहे हैं, अभी तो एक भी देखने को नहीं मिलता है। मन प्रव ज्ञानी 500, अवधि ज्ञानी 1300, वैक्रिय लब्धिदारी 700, 14 पूर्वी 300, चर्चावादी 400, साधु 14,000, साधुया 36,000 और उन साधुओं की प्रमुख हुई साध्वी चंदन बाला, शावक 1,59,000। वो है व्रती श्रवण, जिन्होंने व्रत वहां पर
मुख्य बात श्रावक भगवान के समय श्रावक शब्द का मतलब है व्रती श्रावक। आज के हम जैसे श्रावक नहीं कि श्रावक के घर जन्म लिया हमारे कोई व्रत नहीं तो भी श्रावक कहलाते हम, लेकिन ये सब व्रती श्रावक थे। व्रती श्रावक का सारिका है 3,18,000 की और अन्यायी तो लाखों करोड़ों होंगे जो कि भगवान के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं वो अलग थे। ये संख्या मात्र श्रावकों की है। अब देखिए माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, नगरी क्षत्रिय कुंड, वंश इक्ष्वाकु, गोत्र काश्यप, भगवान का चिन्ह सिंह था, वर्ण सुवर्ण था, शरीर की ऊंचाई 7 हाथ की थी और इनके अधिष्ठाय देव यक्ष मातंग और यक्षिणी सिद्धाई का। इस तरीके से हम परम प्रभु प्रभु का हम कई दिनों से जन्म से और जन्म नहीं उसके पूर्व जब सम्यक दर्शन मिला, जब उनका नए कार के भाव में सम्यक प्राप्त हुआ, तभी से आज दिन तक का ये कल्प सूत्र का पूरा विवरण हमने सुना। भाइयों बहनों अल्कल्प सूत्र एकदम हिंदी में, एकदम सरल सरल हिंदी में उपलब्ध है। ये भगवान की सारी घटनाएं उस कल्प सूत्र में विस्तार से है और आचार्य श्री ने भी ये पुस्तक हम उपासकों के लिए बनाई है, इसमें भी आप इसको पढ़ सकते हो। इसका नाम है उपासना भाग एक,
एक और एक परिश्रम उपासना, एक और राजीमती,
राजीमती जी, उसमें भी आप अधिक से अधिक वर्णन देख सकते हैं। अब हम आगे की आचार्य परंपरा की बात करते हैं तो भगवान के बाद में गणधर गौतम 12 वर्ष तक जो है उन्होंने शासना दी और 12 वर्ष के बाद वो भी मोक्ष सिधारे। उसके बाद के अंदर जो है सुधर्मा स्वामी जो उनके गणधर थे वो 20 वर्ष तक रहे भगवान के वीर निर्वाण के बाद में मोक्ष पधारे और उसके बाद में परंपरा के अनुसार जम्बू स्वामी आए जिनको कि हम कहते हैं और जानते हैं कि हमारे यहाँ उनके बाद मोक्ष के ताले लग गए। वो अंतिम केवली थे, केवल ज्ञान जम्बू स्वामी के बाद में लुप्त हो गया। उसके बाद के अंदर श्रुत केवली की परंपरा थी। श्रुत केवली उनको कहा जाता है कि जिनको केवल ज्ञान नहीं होता लेकिन जो आगमों के 14 पूर्व के ज्ञाता को श्रुत केवली कहा जाता है। वो 5 श्रुत केवली हुए जिनको 14 पूर्व का ज्ञान उत्तरोत्तर उनके जो केवली मौजूद थे उस समय से प्राप्त हुआ, तो 14 पूर्व का ज्ञान था और वो घटते घटते थे। लास्ट जो हमारे जो आगम है वो बाद में बात करेंगे, अभी चल रहा है। अब शुद्ध केवलियों में से 5 में श्रुतधर जो है वो अर्थ की दृष्टि से अंतिम श्रुत केवली थे। वो 14 पूर्व का शुद्ध सूत्र और अर्थ जानते थे 14 पूर्व का जो कि लुप्त हो गया है। वो क्या है कि नेपाल के पहाड़ों में महाप्राण ध्वनि की साधना कर रहे थे। और अब ये देखिए कि आचार्य भद्रबाहु को जो है वो श्वेतांबर दिगंबर परंपरा, अभी दोनों परंपराएं पैरेलल चल रही है। श्वेतांबर परंपरा वीर निर्वाण के मतलब 500 वर्ष बाद हुई, मतलब 500 वर्ष लगभग ये समय श्वेतांबर दिगंबर परंपरा का भी है और हमारे जैन की स्थापना का भी है और जो आता है इनका कालकाचार्य का, ये लगभग समय जो है मतलब लगभग 1500 वर्ष का और हमारे आगम वो भी लगभग ये 5वीं 6वीं शब्द मतलब शताब्दी का लगभग 1500 वर्ष हुए हैं जब ये दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा 1500 वर्ष पुरानी है। हमारे आगम 1500 वर्ष पुराने हैं और ये जैन भी जो शब्द आया है ना, पहले जैन शब्द नहीं था, ये लगभग 1500 वर्ष पुराना है। पहले हमारा जो भगवान ऋषभ से लगा के वीर निर्वाण महावीर स्वामी तक निर्ग्रंथ धर्म कहलाता था, अर्हत धर्म कहलाता था, लेकिन ये जैन शब्द है वो बाद में किसी आचार्यों के द्वारा आया और लगभग ये समय उसको 1500 वर्ष हुए हैं। अब देखिए कि इनका थोड़ा सा हम परिचय देखें कि इनका जन्म वीर निर्वाण 94 में हुआ। वीर निर्वाण मतलब भगवान के निर्वाण जाना के बाद में 94 वर्ष में हुआ। यशोभद्र जो आचार्य हुए उनके उनके पास में उनके पास जो है वीर निर्वाण 138 में दीक्षा ग्रहण की। गुरु के पास में 17 वर्ष रहकर पूर्वों का 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त किया। और वीर निर्वाण 156 में आचार्य बने और वीर निर्वाण 20 शताब्दी मध्य काल में बहुत बड़ा दुष्काल पड़ा और सभी 14 पूर्व ज्ञाता देवलोक पधार गए, केवल भद्रबाहु प्रथम बचे। एक अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु बचे। तो श्रमणों ने भद्रबाहु से वाचना देने का निवेदन किया। 500 श्रमण आए और सभी चले गए क्योंकि इतना रुकने की उनकी श्रद्धा कहिए उनका अधिक मनोबल नहीं था। शेष स्थूली भद्र है वो वाचना देने के लिए रुके रहे। उन्होंने आचार्य भद्रबाहु प्रथम ने वाचना उनको दी और 8 वर्ष तक अध्ययन करवाया और भद्रबाहु और उसके बाद के मेरे स्थूली भद्र का काफी लंबा वार्तालाप है। बीच में क्या होता है कि उन्होंने वाचना देना मतलब प्रारंभ के अंदर वाचना देना के लिए मैं किसी को नहीं दूंगा तो जो है वो श्री संघ आया। उन्होंने श्री संघ ने कहा कि जो साधु श्री संघ की आज्ञा का अवहेलना कर, श्री संघ साधु श्रावकों का मतलब चतुर्विध धर्म संघ का श्री संघ होता है जिसमें साधु साध्वी भी सदस्य होते हैं, चतुर्विध धर्म संघ होता है। तो अगर कोई भी साधु साध्वी श्री संघ की आदेशों की अवहेलना करता है, चतुर्विध धर्म संघ की अवहेलना करता है तो उसको क्या दंड मिलता है। ये बात उन्होंने श्रावकों ने जो है वो श्री संघ ने उनको सुनाई। तो फिर उन्होंने कहा कि मतलब कोई भी दंड दिया जा सकता है, तब वो समझदार थे तो उन्होंने स्वीकार किया कि मैं जो 14 पूर्व का मेरे पास ज्ञान है वो दूंगा। और स्थूली भद्र को उन्होंने देना प्रारंभ किया। अब स्थूली भद्र ने काफी ज्ञान लिया, 8 वर्ष तक अध्ययन किया। बीच में क्या होती है कि यक्षा आदि साध्वियां जो है वो उनकी बहनें थी इनकी स्थूली भद्र की, वो भद्रबाहु के दर्शनार्थ वहां पहुंची और कहा कि हमारे भाई स्थूली भद्र कहाँ हैं। स्थूली भद्र उस वक्त गुफा में थे और उन्होंने जो है वो थोड़ा सा अपनी बहनों को सरप्राइज जो आज की भाषा में उनको देने के लिए सिंह का रूप बनाया। तो बहनों ने देखा कि यहाँ पर केसरी सिंह बैठा, हमारा भाई तो नहीं है। दुखी भी हुई कि कहीं केसरी सिंह भाई को निकल दो नहीं गया। तो पुनः जो है आचार्य भद्रबाहु के पास में गई और उनको कहा कि वहां तो हमारा भाई नहीं केसरी सिंह है। और उन्होंने आचार्य भद्रबाहु ने अवधि ज्ञान से देखा और उन्होंने देखा कि इस तरीके से तो ये ज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है। फिर वो अनुनय विनय किया, वापस आए उनके भद्रबाहु के पास में। तो भद्रबाहु ने कहा कि मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा, इस तरह दुर्योग का। लेकिन काफी अनुनय विनय के बाद उन्होंने 10 पूर्व का ज्ञान तो सूत्र सहित दिया। और इस घटना के बाद में 4 पूर्व का जो ज्ञान है मात्र सूत्रात्मक था, अर्थ सहित नहीं था। तो इस तरीके से जो अगले जो स्थूली भद्र है उनका हम गुणगाथा सुनेंगे। वो जो है 14 पूर्वधारी थे लेकिन जो है वो 10 पूर्व का ज्ञान उनको पूरा अर्थ सहित और 4 का जो है वह सूत्रात्मक था। तो आचार्य स्थूली भद्र भगवान के 8वें पटघर थे। भगवान की जो परंपरा जो चली आ रही है सुधर्मा के बाद की, तो उसके 8वें पटघर ये हुए और वो अंतिम शुद्ध केवली 5वें स्थूली भद्र थे। जो मतलब श्वेतांबर परंपरा का सूत्र जो है भगवान मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मलम स्थूल भद्राजा जैन धर्मोस्तु मंगलम, ये स्थूल ही भद्र के नाम से हुआ है और यहाँ पर स्थूल भद्रादाय की जगह जो है वो दिगंबर परंपरा जो है कुंद कुंदाचार्य है, ठीक है ना। ये फर्क है अपना, बाकी वो सब उतनी पिछले वाली परंपरा को वो भी मानते हैं। अब देखिए इनका थोड़ा परिचय स्थूली भद्र का, कि ब्राह्मण कुल में वीर निर्वाण 116 के अंदर वो जन्मे और पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम शकदाल, माता का नाम लक्ष्मी और आचार्य सम्भूत विजय के पास वीर निर्माण 146 में दीक्षा ग्रहण की। उस वक्त इनकी आयु 30 वर्ष की थी। एक दिन कोसा वेश्या के घर वर्षावास की इच्छा जाहिर की, जो कि पूर्व परिचित थी कोसा वेश्या, तो गुरु ने कह दिया तथास्तु कि जाके तुम कर सकते हो वहां। तो कोसा वेश्या का पूरा प्रसंग जो है वो है पूरा। सुरुचिपूर्ण भोजन तैयार करती, भाव भंगिमा से वो आकर्षित करती और कोसा, लेकिन वो उनकी तरफ आकर्षित नहीं हुए। कोसा को धर्म का मर्म समझाया, उसे श्राविका बनाया, काजल की कोठरी में रहकर भी वो चातुर्मास करके भी सुरक्षित रहे। तो गुरु ने जब ये असुली भद्र आए तो दुखकर महादुखकर जो क्रिया के साधक नाम से उनको संबोधित किया, उनको काम विजेता के रूप में संबोधित किया। तो ये जो 14 पुरुष का ज्ञान है वो दृष्टिवाद कहलाता है। वह किसी को याद नहीं था, भद्रबाहू के पास में बताया मैंने जैसा 14 पुरुष का ज्ञान था वो उनको लिया। तो इस तरीके से वीर निर्माण 170 में वो आचार्य बने और 30 वर्ष उनका ग्रस्त का था, 60 वर्ष मुनि काल का था, 45 वर्ष के आचार्य पद पर रहे। 15 दिन के अनशन के बाद वीर निर्माण 215 में वो स्वर्गवासी हुए। अब इसके बाद में और भी आचार्यों की परंपरा है, वो हम आप जैसा चाहें, हमारे पास तो गुरु का भेजा हुआ भंडार है।
चला ना, हाँ
अब थोड़ा आगे मुख्य मुख्य आचार्य जिन्होंने जैन धर्म की प्रभावना की, उन आचार्यों का हम देख रहे हैं। आचार्य श्याम जिसको प्रथम काल का आचार्य कहते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। अब क्या हुआ कि इंद्र ने महाविदेह क्षेत्र में सिमंदर स्वामी से सूक्ष्म निबोध का प्रवचन सुना, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो तीर्थंकर है नहीं, उसने सिमंदर स्वामी से महाविदेह के अंदर जो विवेचन सुना और प्रश्न किया कि क्या भरत क्षेत्र मनुष्य लोक में निबोध की व्याख्या करने वाला, हाँ, तो भगवान सिमंदर स्वामी से इंद्र ने प्रश्न किया कि क्या भरत क्षेत्र मनुष्य लोक में निबोध की व्याख्या करने वाला कोई मुनि उपाध्याय आचार्य है क्या अभी मौजूद। तो भगवान जो है वो सिमंदर स्वामी ने बताया कि आचार्य श्याम प्रथम काल का आचार्य इसका बहुत अच्छा विवरण विवेचन उल्लेख जानते हैं, उनका उल्लेख किया। तो वह इंद्र ब्राह्मण के रूप में उपस्थित हुआ और आचार्य श्याम को प्रथम काल का आचार्य को अपनी हस्तरेखा बताई। तो हस्तरेखा देखते ही श्याम आचार्य ने कहा कि तुम्हारा आयु पल्लोपम से ऊपर है, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम कोई देव हो। इतना उनको ज्ञान हस्तरेखा देख करके और निगोद का उन्होंने निवेदन किया, निगोद का विवेचन का निवेदन किया। सांगोपांग जो है निगोद का विवेचन आचार्य श्याम प्रथम काल का आचार्य ने जो है वो किया, बहुत प्रतिपादित किया, सुनकर के बहुत प्रसन्न हुआ इंद्र। इंद्र ने अपनी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए उपाश्रय का द्वार, कि भाई इंद्र आया था, इसकी क्या विटनेस, विटनेस करने के लिए उपाश्रय का द्वार। वो रिद्धियों सिद्धियों के मालिक होते हैं, इंद्र है, देवताओं के पास भी बहुत रिद्धियां सिद्धियां होती है। जिस उपाश्रय में काल का आचार्य प्रथम श्याम आचार्य विराज रहे थे, उसका द्वार पूर्व से पश्चिम की ओर कर दिया। और एक इसी तरह के बहुत प्रभावशाली, बहुत ही ज्ञानवान, मर्मज्ञ और जैन धर्म की प्रभावना करने वाले आचार्य कालक द्वितीय, काल का आचार्य द्वितीय, अब ये चतुर्थी को संवत्सरी की स्थापना करने वाले आचार्य कालक द्वितीय थे। इन्होंने स्थापना की, इसका विवरण पहले आया, फिर भी संक्षिप्त में वापस आपको रिवाइज कर देता हूँ कि राजा जो है सातवाहन ने पंचमी को इंद्र महोत्सव होने के कारण संवत्सरी छठ को करने की प्रार्थना की, परंतु आचार्य कालका द्वितीय ने इसे असंभव बताया, तो उन्होंने कहा आप चतुर्थी को कर दें, पंचमी को हमारे इंद्र महोत्सव है, तो उन पर करुणा करके चतुर्थी कर दी। और चतुर्थी जो चौथ को संवत्सरी जो है वो हो गई, और आज ये अपने कई जगह विवाद चल रहा है, स्थापित होगी। लेकिन इसको स्थापित करने वाले जो कालकाचार्य द्वितीय थे, ये ध्यान रखने की बात है, वो उस समय से चला आ रहा है। एक आचार्य खपूट हुए हमारे यहाँ, जिन्होंने धर्म संघ की बहुत प्रभावना की, इनका समय भी निर्माण की 14वीं सदी था। और गुड़शस्त्रपुट में क्या हुआ कि एक बड़ा शहर था, उसमें यक्ष का भयंकर उपद्रव हुआ और पूरा जैन संघ उपद्रव से प्रभावित हो गया, गिर गया। और आचार्य खपूट के पास में जैन समाज निवेदन लेके आया कि पूरा जैन समाज इस उपद्रव से ग्रसित है, आप जो है हमारी रक्षा कीजिए, जैन धर्म की, जैन संघ की प्रभावना कीजिए। तो वो आचार्य खपूट यक्ष की मूर्ति के पास गए और उसका जो उपद्रव किया हुआ था झाड़ागर के रूप में यक्ष के कानों में जूते बांध दिए। अब पुजारी आया और उसने देखा, बहुत नाराज हुआ, क्योंकि पुजारी का वो भगवान था, उसकी उपासना करता था। और राजा को जाकर के पुजारी ने शिकायत की, राजा ने आदेश दिया, ये किसने किया? पुजारी ने कि आचार्य खपूट ने किया है, कि खपूट आचार्य जी को हमारे राजभवन में बुलाया जाए। और उसने अपना राजा ने आदेश सुनाया कि इनको पीटा जाए, इनको कोड़े लगाए जाए। आचार्य खपूट के कोड़े लग रहे हैं, लेकिन वो पिटाई तो खपूट की हो रही है, कोड़े कहाँ लग रहे हैं? अंतःपुर में रानियों के कोड़े लग रहे हैं। खपूटाचार्य वो भी बहुत ही चमत्कारी थे कि राजा को चमत्कार दिखाना चाहिए, तो अपनी विद्या से, अपनी रिद्धियों सिद्धियों से अपने कोड़ों के दुख को, कोड़ों को रानियों पे स्थानांतरित किया। अब अंतःपुर में खलबली मच गई और रानियों के कोड़े लग रहे हैं, तो यह बात राजा तक आई, तो राजा ने उनको नमस्कार किया, क्षमा मांगी और इनको योगी का चमत्कार समझ करके उनको स्वतंत्र किया, उनको छोड़ दिया, क्षमा मांगी। ऐसी कई घटनाएं हमारे जैन धर्म में प्रचलित है, क्योंकि जैन धर्म की प्रभावना है। ऐसे ही एक आचार्य पादलिप्त हुए हैं, वो चमत्कारिक विद्याओं के धनी थे, बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां थी, चमत्कार थे उनके पास में। वो उनके उनकी एक सबसे बड़ी विद्या क्या थी कि वो पैरों पर औषधियों का लेप करके गगन में विचरण करते, हवाई जहाज की तरह वो आकाश में उड़ते थे। इसीलिए इनका नाम आचार्य पादलिप्त पड़ा, कि पैरों के जो है वो दवाई लेप करके उड़ा करते थे। मथुरा की एक घटना आती है कि राजा के सिर में भयंकर दर्द हुआ, कई बड़े बड़े राज्य वैद्यों को बुलाया गया, अन्य वैद्यों के उपचार किए, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, प्राकृतिक सभी दवाएं उस समय जो प्रचलित थी उनका उपचार किया। एलोपैथी उस समय नहीं थी, एलोपैथी 100-200 वर्ष हुए अभी आए हुए थे। कई उपचार किए, उपचार लागू नहीं हुआ। अब आचार्य पादलिप्त को किसी ने निवेदन किया, आप चमत्कारी हैं, आप कृपा करके उनके सिर दर्द को ठीक करिए। तो उन्होंने मंत्र विद्या से अपनी ये अंगुली, प्रदेशनी अंगुली को जानू पर घुमा करके और उनके सिर के ऊपर लगाया 2-3 बार। तो इस अंगुली के सिर के अंदर मंत्र विद्या से उनके सिर दर्द को शांत किया। तो राजा जो है बहुत ही जो है उनका उनसे जो है बहुत प्रार्थना अनुनय विनय किया, उनका एहसान कृतज्ञता मानी और भक्त बन गया। तो इस तरीके से हमारे जैन शासन की बहुत प्रभावना बड़ी बनी। इनको 10 वर्ष की अवस्था में नाग हस्तीसुरी, 10 वर्ष की अवस्था में ही नाग हस्तीसुरी ने उनको आचार्य पद पर नियुक्त किया। उनके गुरु ने मात्र 10 वर्ष के थे जब ये आचार्य बन गए। वीर निर्वाण की 7वीं-8वीं शताब्दी के ये प्रसिद्ध विद्वान माने जाते हैं। अब ऐसे ही आचार्य वज्र स्वामी हुए हैं तो उनके ग्रंथ का नाम धनगिरी था। तो नहीं, ये आचार्य वज्र स्वामी उनके हुए हैं, एक धनगिरी नाम के ग्रंथ थे, उनकी पत्नी सुनंदा थी। तो धनगिरी से स्वीकृति लेकर के सिंहगिरी के पास में धनगिरी ने संयम स्वीकार किया, ठीक है ना। अब जब ये ग्रस्त से निकले थे अपनी पत्नी की परमिशन लेकर के, तब पत्नी गर्भवती थी। तो इनके दीक्षा लेने के बाद में पत्नी सुनंदा के पुत्र उत्पन्न हुआ। अब क्या है कि जो पुत्र का नामकरण होता है उत्सव मनाया जाता है, तो परिवार की स्त्रियां जन्मोत्सव मनाते हुए कहती कि पिता पिता इनके धनगिरी होते तो बहुत अच्छा उत्सव मनाते, आज तो ठीक है फॉर्मेलिटी हो रही है। तो ये जब सुना तो बच्चे को उनकी लोरियों में, उनकी उनकी स्त्रियों की बातों में उनको जातिष्मन ज्ञान हो गया और उनको मालूम हुआ कि मेरे पिता जो है वह साधु बन गए हैं। तो माँ को मोह न जागे, अब मोह न जागे और वो साधपना लेना चाहते थे, मोह नहीं जगाने के कारण वो रोने लगा। और 6 महीने तक जो है ये बच्चा जो आगे जाके वज्र स्वामी बनेगा रोता रहा। तंग आकर के क्या हुआ, उधर सिंहगिरी ने जो है धनगिरी को जो है गोचरी लाने के लिए भेजा और कहा कि जो भी वस्तु भिक्षा में मिले तुम ले आना। इधर वो जो धनगिरी अपनी पत्नी के पास में आया और वो तंग आकर के उस पत्नी ने धनगिरी को बहरा दिया। उनको यह लड़का लेकर के वो अपने जो गुरु है वो सिंहगिरी के पास में आए, पाला पोता और उनको जो है खूब विद्या अध्ययन कराया, उसको जो है अच्छा पारंगत बनाया। अब थोड़ा क्या हुआ कि 3 वर्ष का ही समय बीता था, तो अब क्या है माँ को पुनः माँ का ममत्व मोह जागृत हुआ और वो सिंहगिरी के पास आई कि मेरे बच्चे को मुझे वापस दो। तो सिंहगिरी ने कहा कि राजा जैसा निर्णय करेगा कि अगर वो बच्चा हमारे पास आना चाहता है तो हमारे पास आ सकता है, आपके पास आना चाहता है तो आपके पास जाए, लेकिन इसका न्याय राजा करेगा। अब राजा के एक पास में औगा लेकर के सिंहगिरी बैठे हैं, उधर माँ ने बच्चा छोटा ही था तो जो उसने खिलौने मिठाई दिखाया और अपनी तरफ आकर्षित करने की खूब कोशिश की, लेकिन वो तो वैरागी थे, उनके योग दीक्षा का था। तो औगा जब दिखाया तो वो अपने सिंहगिरी ये जो जाकर के पुनः तीन वर्ष के जो अंतराल के बाद में पुनः जब ये घटना घटित हुई, अपने गुरु की जो गोद में जाकर के बैठ गए और इस तरीके से वो अब उन्होंने दस गुरुओं का ज्ञान सिंहगिरी से सीखा और अब दस गुरु भी रह गए। अब चौदह से चार गुरु गायब हो गए, दस गुरु भी बचे हैं, धीरे धीरे सब गुरु गायब हो जाएंगे। तो क्योंकि समय का काल है, पांचवें आरे के कारण समय के प्रभाव से धीरे धीरे ज्ञान लुप्त हो रहा है। अब दस गुरुओं का ज्ञान सिंहगिरी से लिया तो ये आठ वर्ष घर में रहे, अस्सी वर्ष संयम पर्याय रहा इनका, इनका वज्र स्वामी नाम से छत्तीस वर्ष में युग प्रधान बने और इक्यासी वर्ष की अवस्था में देव गमन हुए, आर्य रक्षित आचार्य हुए। ये मध्य प्रदेश मंदसौर निवासी के ब्राह्मण परिवार में वीर निर्माण 522, पिता का नाम सोमदेव, माता का नाम रुद्र सोमा, दृष्टिवाद आगम का इन्होंने अध्ययन किया और वज्रसामी जो पहले अभी बताया गया इनके विद्या गुरु बने। आचार्य दुर्बलिका पुष्य मित्र 17 वर्ष तक ग्रस्त जीवन में रहे, संयम 50 वर्ष रहा, 20 वर्ष आचार्य पद रहे, स्वर्गवास वीर निर्माण 917। ये ध्यान योगी आचार्य दुर्बलिका पुष्य या ध्यान योगी के बारे में इनके कई ध्यान शतक वगैरह कई इनके ग्रंथ भी है। आचार्य उमा स्वाति दिगंबर इन्हें शुद्ध केवली तुल्य मानती है और इनका समय विक्रम की तीसवीं से तीसरी सदी तत्वार्थ सूत्र जो आज दिगंबर समाज का सबसे सुप्रसिद्ध ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र और ज्यादातर उसी का ही प्रवचन होता है। जैसा हमारे आगमों का आचारण का उत्तराध्ययन का कल्प सूत्र का होता है तो तत्वार्थ सूत्र के लेखक आचार्य उमा स्वामी थे, इन्होंने 500 ग्रंथों की रचना की। आचार्य कुंड दिगंबर में बहुत मान्यता प्राप्त है, दिगंबर परंपरा में तीर्थंकर महावीर और गणधर्व गौतम के बाद विशिष्ट स्थान कुंद कुंडाचार्य का है। इनका समय विक्रम की तीसरी शताब्दी है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम कुंद कुंडाचार्य जैन धर्मोत्सु मंगलम, ये इनका बना इनके समय का है। और श्वेतांबर दिगंबर परंपरा वीर निर्माण की पांचवी सदी 15 वर्ष हो गए जैसे मैंने बताया। अब आगे आचार्य देवर्जी गणी आते हैं, जैन इतिहास में इनका नाम स्वर्ण प्रस्तों में लिखा हुआ है, देवर्जी गणी अंतिम पूर्वधर थे, उनके पास एक पूर्व का मात्र ज्ञान था और ये पूर्व का ज्ञान का विच्छेद होने वाला था। तो इन्होंने सबको बुलाया, पूरे जो है अपने जैन संघ को बुलाया, कहा कि अब जो है पूर्वों का ज्ञान लुप्त हो रहा है, वल्लभी नगरी में जो है वो इसलिए उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए। आगमों का संपादन किया गया वीर निर्माण के 510 में ये आगम है जो आज ही हम पढ़न करते हैं। इस प्रकार वीर निर्माण के 1000 वर्ष पूरे होने पर जो है पूर्व ज्ञान का विच्छेद हो गया और ये आगम आए, ये जो है 1000 वर्ष पुराने पर जो आगम जो जो है हमारे पास में है वहां पर अब पूर्वों का विच्छेद हो गया और आगम आगे जो भगवान की वाणी है, जो गणधर थे वो गुम्फित किया वो याद रखते थे, पूर्वधर होते थे उनको पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी, वो अपनी स्मृति में याद रखते थे। उसके बाद के गणधरों के बाद के अंदर शुद्ध केवली हुए, दस पूर्वधारी एक पूर्वधारी जो अभी हमने बताया आपको देवर्षि गणी तक वो याद था, ज्ञान कम था लेकिन जो कुछ भी था आज वो आत्मों के रूप में है। इस तरीके से बहुत से आचार्य प्रसिद्ध हुए हैं, उनका इतना समय नहीं है कि एक एक की व्याख्या करें। आचार्य सिद्धसेन और भद्रबाहु द्वितीय, पहले काम में विवरण हुआ, जिन भद्रगणी समाक्रमण हुए, मान तुंगाचार्य हुए जिन्होंने भक्तामर की रचना की, अकलंक हुए जिनदास मेहतर हुए, आचार्य हरिभद्र हुए, आचार्य एक एक की गाथा लंबी लंबी है, आचार्य वीरसेन हुए, सिद्ध ऋषि हुए, शीलांत हुए, उद्योतन सूरी हुए, जिनेश्वर सूरी हुए, इन्होंने बहुत बहुत राजा अकबर के साथ में बड़ी बड़ी जो है वो तीन दादा गुरुओं की पूरी है, अभय देवी अभय देव सूरी हुए, नवांगी टीकाकार कहे जाते हैं, जिन दत्त सूरी हुए जिनकी अकबर के साथ में बहुत बड़ी है, हेमचंद्राचार्य हुए, मलयगिरी हुए, जिन चंद्रसूरी मणिधारी जिनका ये दिल्ली के पास विवेचन आता है मणि थी और वो पूरा विवेचन मणिधारी हुए, देवेंद्र सूरी हुए, जिन कुशल सूरी हुए, हीर विजय सूरी हुए, उपाध्याय यशो विजय जी हुए, और अब आ रहे हैं हमारे लौकाशाह जो कि सावक स्थानिक वासी थे, उसके बाद में लवजी ऋषि हुए, धर्म ऋषि हुए, धर्मदास जी हुए और रघुनाथ जी तक हम आ गए। रघुनाथ जी हमारे आचार्य भिक्षु के जो है वो गुरु थे, पर उन्होंने माँ दीपा जी को कहा कि तुम इसको दीक्षा दो, तो माँ दीपा ने कहा था कि मैंने तो जो है सिंह का स्वप्न देखा है, मेरा पुत्र सिंह जैसा बड़ा कोई बनेगा, तो उन्होंने कहा कि उसके जैसा ही बनेगा, ये बहुत बड़ा धर्मात्मा बनेगा। अब देखिए हम आगे चलते हैं, लौकाशाह की मैंने बात की तो विक्रम संवत की 15वीं सदी, हम 15वीं सदी पर आ गए। हे भगवान का ऋषभ से चलते 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 अब जो है वीर निर्माण की 15वीं सदी, अभी सदी चल रही है 20वीं 21वीं सदी चल रही वीर निर्माण की। तो इस तरीके से जो है हम सिरोही के अरठवाड़ा, ये जो लौकाशाह थे वह सिरोही के अरठवाड़ा, लौकाशाह के पिता हेमाबाई थे, ये आगमों के लिपिकार थे, मात्र साधु नहीं थे, आगमों के लिपि की लिपि मोती जैसी थी, आगमों की लिपि लिखा करते थे। प्रतिलिपि करते समय पता चला कि सिद्धांत व साधवाचार्य में गहरा अंतर है, जो आत्मा में आ रहा है वैसा साधु पालन नहीं करते हैं, मात्र वो श्रावक थे, मात्र लिपिकार थे, लेकिन उन्होंने इस फर्क को उन्होंने समझा और लोगों को प्रेरणा दी कि ये फर्क है, सिद्धांत और पालन में फर्क है। इस बात से प्रभावित होकर के एक क्रांति हुई, क्रांति का उद्घोष हुआ और लौकाशाह ने सिद्धांत दिया कि ये स्थितियों में रह करके साधु स्थिरवास करते हैं, स्थानकों में रह करके, तो उनकी ये हमारे आत्मों में नहीं है। तो ये जो उनकी बात से प्रभावित होकर के मात्र श्रावक थे, लेकिन उनका कितना शुद्ध ज्ञान था, उनकी आत्मा कितना पवित्र थी, जब उनकी उनके बात से उनकी प्रेरणा से 45 व्यक्तियों ने श्रमण दीक्षा दी 1541 में, ये दिवंगत हुए, लेकिन उनकी प्रेरणा से 45 साधु दीक्षित हुए। अब यहाँ से सार्वती परंपरा चालू हो रही है लौकाशाह से, तो ये जो है 1541 अब आप जोड़ दीजिए, कितना 15वीं सदी से अब तक कितना हुआ है, लगभग 700 साल का लगभग का समय है जो तब से हमारा ये स्थानकवासी का जो है इतिहास है, जन्म है स्थानकवासियों का। अब आचार्य धर्मदास जी हुए हैं अहमदाबाद जिले के हरखेत गांव के निवासी यति, ये यति थे तेज सिंह जी के पास में, यति तेज सिंह जी के पास में इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। 2 वर्ष तक पोतियाबंद संप्रदाय था स्थानकवासियों में, वहां पर दो वर्ष तक साधना की। विक्रम संवत 1700 में सात साथियों के साथ में उनकी शाखा स्थानक वासी कहलाई, वो अलग हो गए। कुल 99 दीक्षाएं, जिनमें से 22 शिष्यों को धर्मदास जी ने आचार्य पद दिया, इसीलिए इनको 22 संप्रदाय कहते हैं। आचार्य धर्मदास जी ने 99 दीक्षाएं दी, उसमें से 22 को शिष्यों को आचार्य बनाया, इसलिए 22 टोला कहलाते हैं, स्थानक वासी कहलाते हैं, 22 संप्रदाय इसीलिए कहलाते हैं, इनके 22 आचार्य बनाए। उसी कारण से इनके आचार्य आचार्य आज कितने हैं हमको भी पता नहीं है। आगे जाकर स्थानक वासी, साधु मार्गी, ढूंढिया, 12 पंथी आदि नाम हुआ। विक्रम संवत 1772 धारा नगरी में उनके अज्ञा हुआ धर्मदास जी के, धारा नगरी में एक साधु ने अनशन किया, संथारा किया, परंतु दुर्बलता के कारण वो स्थिर नहीं रहे, संथारा तोड़ दिया। धर्मदास जी ने देखा संघ की शान चली जाएगी, संघ की शान के लिए उसके स्थान पर वो संथारा पथिक लिया, उस साधु के स्थान पर स्वयं ने अनशन किया धर्मदास जी ने। 3 दिन का देखिए कितनी कितनी धर्म संघ की प्रभावना करने वाले सभी बंधुओं, ये हमारा जो जैन धर्म है, जैन संघ है, आज इतना गहरा है, पताल तक पहुंचा हुआ है इसकी नींव, और इतना आगे चलता रहेगा, ये बलिदान के कारण है, आचार्यों की शावरों के बलिदानों के कारण।
देखिए
तुम्हारे पास तो प्यार है, हम तो 4 दिन तक चला सकते।
संघ गांव
जय हो।